मिश्री से मीठे जिसके बोल, जिसके वाक्य है अनमोल। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर बोले सब दिल खोल कर, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वेरी गुड, वंस मोर, हाथी घोड़ा पाल की ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट टू लेट यू नो, दोज हू नीड ट्रांसलेशन प्लीज फील फ्री टू आस्क अवर अशर्स, दे विल ब्रिंग यू द हेडफोन्स। फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन सिलेक्ट चैनल 1, फॉर तमिल ट्रांसलेशन सिलेक्ट चैनल 5। तो आप सभी का ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज दूर बैठे भी कई सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत वेलकम। और सबसे स्पेशल वेलकम उनका जो आज यहाँ पहली बार आए हैं। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, स्पेशल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप में से कई लोगों ने यहाँ आते समय झांकी भी देखा है, सत्युग का दर्शन भी किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रोग्राम के बाद भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। तो उसके पहले हम प्रोग्राम की ओर बढ़ें, सबसे पहले कुछ हाउस रूल्स बता देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए कृपया अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ या साइलेंस पर रखें। पीने का पानी या वॉशरूम इस रूम के बाहर पीछे की तरफ है। इस प्रोग्राम को फिल्म किया जाएगा, तो यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे अशर से कॉन्टेक्ट करें। वैसे संभावना तो नहीं है, पर यदि फायर अलार्म बजे तो हमारे अशर आपको गाइड करेंगे नियरेस्ट एग्जिट की तरफ। तो आज फायर अलार्म का तो पता नहीं, पर हम सबके दिल में प्रेम की अग्नि जलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बीच एक ऐसा अनोखा सारथी आएगा। तो अनोखा सारथी ऐसा जिसने अनेक रूप अपनाया, कभी गोविंद बनकर रिश्तों को प्रेम से जगाया, नंदलाला ऐसा जो मुरली की धुन से सबको नचाया, तो कभी वासुदेव बनकर ज्ञान के पासों से शकुनी को हराया, और माधव माधव बनकर जीवन का नया दृष्टिकोण बताया। नया दृष्टिकोण, कृष्ण जन्माष्टमी, अ न्यू पर्सपेक्टिव आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमारे बीच कृष्ण आएंगे, हम दर्शन भी करेंगे, झूमेंगे भी, नाचेंगे भी, पर उसके साथ साथ एक नया दृष्टिकोण भी साथ लेकर जाएंगे कुछ कॉन्वर्सेशंस के द्वारा। कॉन्वर्सेशंस हमारे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। कृष्ण के भी वाणियों में हमने कई ऐसे प्रेरणादायक बोल देखे सुने हैं, तो आज भी हम कुछ ऐसे वार्तालाप, कुछ ऐसे इंसाइटफुल डायलॉग सुनेंगे जो आपके हृदय को टच करेगा, पर उसके साथ साथ उसका आध्यात्मिक रहस्य भी समझेंगे। तो चलिए एक बार फिर से बोले, हाथी घोड़ा पाल की। अच्छा, यहाँ है रे दुकान।
दुकान हाँ।
अरे गोपी, तुम यहाँ इतनी अंधेरे में तुम यहाँ क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं गोकुल पर राक्षसों का कितना साया है? हाँ, इसीलिए यहाँ से चली जाओ।
हाँ?
नहीं तो राक्षस तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे।
राक्षसों का साया है?
और
वो भी मुझे मुझे पकड़ के ले जाएंगे?
हाँ गोपी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने घर चली जाओ।
क्या, मैं चली जाऊँ? पहले तू बता, तू इतने अंधेरे में क्या कर रहा है?
मैं
मैं तो तुम सबकी रक्षा कर रहा हूँ।
अच्छा, रक्षा? वो कैसे? रक्षा करने वालों के पास तो बड़ी बड़ी तलवारें होती है ना? तेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं है।
है ना? मेरे पास भी है।
क्या है रे तेरे पास? मैं भी तो देखूं जरा, दिखा। अरे छिपा क्या रहा है? हाथ आगे कर।
देखो।
दोनों हाथ।
देखो।
क्यों? किसके घर का माखन चुराया?
माखन? मैंने कब चुराया? नहीं तो?
कान्हा, तूने माखन चोरी की ना?
नहीं की। मैंने माखन नहीं चुराया।
चुराया?
बोला ना, नहीं चुराया, नहीं चुराया, नहीं चुराया।
पकड़े गए नंदलाला। चल, अभी चल, तुझे यशोदा के पास ले चलती हूँ।
नहीं, नहीं गोपी, नहीं, मैया के पास नहीं। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, मैया को नहीं बताना।
अच्छा, जो कहूँगी वो करेगा?
हाँ, तुम जो कहोगी वो करूँगा।
ठीक है, आज तो तू हमारे लिए नृत्य करेगा। नृत्य करना तो आता है ना तुझे?
नृत्य? हाँ, देखो मेरा नृत्य।
चल नटखट, बस अब बहुत हुआ। वैसे भी अंधेरा हो चुका है, अब तू सो जा।
सो जाऊं? लोरी के बिना मुझे नींद नहीं आती गोपी।
लोरी के बिना नींद नहीं आती? ठीक है, मैं सुनाती हूँ।
हाँ।
कान्हा सुजा जरा, कान्हा सुजा जरा, कान्हा सुजा जरा, कान्हा सुजा जरा।
मुरबंसी बजैया नजर आया कन्हैया,
ओ
काना 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 कहाँ है? काना ये क्या कर रहा है? सारा दिन माखन 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 परेशान कर रखा है। गोकुल की सभी गोपियाँ पता है क्या कहती हैं? सबके घर की तो मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है, बस हो चुका, चल अब मेरे साथ चल। आज तो मैं तुझे इस उखली से बांध के रहूंगी, यही तेरा दंड है। देखो तो आज तुझे कौन बचाता है?
मैया मैया
बिल्कुल चुप, सीधा होकर खड़ा रहे। अरे पेट क्यों फुला रहा है, ठीक से खड़ा रहे। आज तो मैं तुझे बांध कर ही रहूंगी, हंसता है रुक। अरे हर बार ये दो उंगली की कमी क्यों पड़ जाती है? हे प्रभु ये कैसा चमत्कार है, कितनी भी लंबी रस्सी बांधती हूँ हर बार दो उंगली छोटी रह जाती है। मैं तो थक चुकी हूँ, अब तू मैया से खेल खेलेगा। मैं तो हार गई रे।
मैया मैं बांधू?
हाँ ले बांध।
देखो मैं बंध गया।
Come here, my dear Krishna Kanhai, मैंने तेरे लिए ढेर सारा मक्खन बनाई, दूध दही बटर मिश्री सब कुछ बनाई। Come to our house, तुझे इनसे मिलाऊं।
तो हमने कृष्ण कन्हैया को मक्खन खाते भी देखा और यशोदा की प्यारी डांट भी खाते देखा, परंतु हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यू होती है, कोई शिक्षा होती है। तो इन सभी शिक्षाओं को, इन सभी रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए आज हमारे बीच हमारी प्यारी दीदी हैं, आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो कि 65 सालों से राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, राजयोग टीचर हैं, पर उसके साथ साथ यूरोपियन डायरेक्टर भी है। और उनकी अद्भुत कला कहें या ज्ञान की गहराई, जिस प्रकार से, जिस रमणीकता से वो हम सभी को ज्ञान में डुबा देते हैं, वो वाकई में अद्भुत है। तो अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगी हमारी प्यारी सुदेश दीदी जी का। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जो हम सभी अनुभव करते हैं कि दीदी साक्षात प्रेम की मूर्ति है। तो लेट्स वेलकम सुदेश दीदी ऑन स्टेज। तो दीदी जी आपको बहुत वेलकम। तो अभी अब हम आपसे सुनेंगे कि जैसा दृश्य में दिखाया कि कृष्ण को बांधने के लिए दो उंगली की कमी पड़ जाती है, तो वो दो उंगली कौन सी है और ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप हमारे साथ स्पष्ट करना चाहेंगे?
शांति ओम शांति। आज के इस सुंदर अवसर पर इस ओम शांति में आनंद समाया है, प्रेम समाया है, खुशी समाई है, इसीलिए आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक सुंदर दृश्य जो भागवत में वर्णन है वो हम देख रहे थे। उसमें भी श्री कृष्ण के दो दृश्य देखे, एक्चुअली माखन चोर और यशोदा मैया का आश्चर्य का दृश्य। अभी मैं थोड़ा समझने की बात है कि श्री कृष्ण जिनकी हम इतनी महिमा करते हैं, क्या बात थी, कौन सी दो चीजें थी जिसके कारण वो दो उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती थी हर समय। क्या सर्वशक्तिवान सदा निर्बंधन बंधन से न्यारा उनको कोई दैहिक रीति से स्थूल रीति से बांध सकता है? बंधन मुक्त करने वाला जिनको हम मुक्तेश्वर कहते हैं, क्या उनको मनुष्य आत्माएं बांध सकती हैं? एक हिसाब से यस, पर रियलिटी में नो। क्यों यस क्यों कहा? कि प्रेम के बंधन में भगवान को बांधा जा सकता है। स्नेह की डोरी बड़ी मजबूत होती है, निश्चय की शक्ति की गांठ बड़ी पक्की होती है, परंतु सच्चा स्नेह चाहिए, स्वार्थ वाला स्नेह नहीं, आशाओं वाला स्नेह नहीं, विनाशी प्राप्तियों वाला स्नेह नहीं। क्योंकि पहले स्नेह तो है, प्यार तो है, पर पहले वस्तु से प्यार है। मुझे चाहिए क्या? यशोदा जी को क्या चाहिए था? सारे गोकुल वाले क्या कह रहे हैं, ये मक्खन चुरा लेते हैं, मेरा नाम बदनाम हो रहा है, हमारे कुल की शान जा रही है। क्या चाहिए था? मान और शान चाहिए था। तो लोग मान शान के आधार से बांधना, तो परमात्मा तो किसी भी प्रकार के बंधन में न मान के बंधन में है, न किसी प्रकार की लौकिक आशाओं के बंधन में है, वो बंधन मुक्त करने वाले। और ये जो वास्तव में चरित्र दिखाए हैं, ये बहुत स्वाभाविक रीति से हम साकार रूप में मनाते हैं, श्री कृष्ण जी को साकार रूप में देखते हैं, परंतु चरित्र विचित्र के हैं। आपने शुरू में कहा कि वो कभी सारथी बन के आते हैं, कभी सखा बन के आते हैं, कभी विश्व का उद्धार करने के लिए आते हैं, कभी सृष्टि पुरानी सृष्टि का संहार करने के लिए आते हैं। वो कौन? वो निर्बंधन परमपिता परमात्मा जिनको कोई भी बंधन में बांध नहीं सकता, मुक्तेश्वर की कहानी है। परंतु हम साकार में अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जब अनुभव करने वाले आत्माओं ने जो अनुभव किया था वो पुस्तक में लिखा, आर्टिस्ट ने उसका पिक्चर बनाया दिया, ड्रामा करने वाले ने उसका ड्रामा किया, फिल्म बनाने वाले ने और भी एडिशन किया तो फिल्म बना दी, एडिशन होता चला गया, वो स्थूल वाला रूप बनता चला गया। पर वास्तव में ये बहुत सूक्ष्म बात है। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं किसी भी बंधन में नहीं बनता हूँ, कि मैं निराकार हूँ, निर्विकार हूँ। और निराकार निर्विकार निरअहंकारी है, उनको अहंकार का बंधन नहीं बांध सकता। सत्कार और प्यार का बंधन बांध सकता है। इसीलिए वास्तव में ये स्नेह सहयोग निश्चय त्याग और तपस्या वाली बात है। तो परमात्मा बंधन में बनता भी है परंतु नहीं भी बनता है। दूसरी बात है श्री कृष्ण जी के मक्खन की। अभी आप सबको जो वो जो चित्र देखते ही जब मक्खन चुरा रहे होते हैं तो मक्खन चुराने की आप जो बहने हैं खास करके या गोप हैं, थोड़ा मन में किनके मन में ये भाव होता है काश मैं भी उस समय होती जिस समय ये गोप गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ मक्खन चुराती थी, कितना अच्छा होता। ऐसा किसके मन में आता है? जिनको आता है वो हाथ उठाए, काश हम भी वो होते। अच्छा बराबर, आप भी होते उस समय। अच्छा भला मक्खन चुराते तो कौन सा मक्खन चुराते थे? आप चोरी करना सीखेंगे, वो चोरी करना सिखाएंगे। कौन सा मक्खन था वो? नंद बाबा के घर में इतनी गऊएं, 9 लाख गऊएं जिसके घर में हो और हर ब्राह्मण परिवार में जिसको जितने बच्चे हैं उतने गऊएं दान किए हों और उनका बेटा मक्खन चुराए। क्या घर में मक्खन खाने को नहीं डायरेक्ट नहीं मिलता था क्या? मक्खन का मतलब है सार, यानी सृष्टि के सार। दूध मटकी भरी हुई हो उसका मक्खन इतना सा निकले गोला बन जाएगा। तो वास्तव में इस सृष्टि रूपी संसार में जो सार है वो है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सत्यता, सभ्यता, सदा निर्बंधन जीवन, निर्भय रहने वाला जीवन, आनंदमय जीवन, जिसको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। तो वो सुख धाम को जीवन में लाने के लिए गुप्त पुरुषार्थ की आवश्यकता है। गोप गोपियों के साथ मक्खन चुराया तो गोप गोपी कौन? जो गुप्त रहने वाले गुप्त पुरुषार्थ। जितना जितना हम अंतर्मुखी होते जाते हैं हम दूसरों के गुणों को परमात्म शक्तियों को अंतर्मुखता की मटकी से देते जाते हैं। चुप शो नहीं, शो करने वाली आत्माएं कभी गुणवान नहीं बनती हैं। महिमा पाने के लिए व्यवहार अच्छा है वो वास्तव में हृदय का प्यार नहीं है। तो जो स्वाभाविक रीति से सत्यता वाले गुण है, जो स्वाभाविक में अपना गंभीरता से पुरुषार्थ किया जाता है वो गुप्त है, अंतर्मुखी स्थिति में है। यानी आत्मा को अपने अंदर जा करके अपने गुणों से दूसरे आत्माओं के गुणों को भी चुपचाप कर ले लेना। कहा जाता है किसी ने बहुत अच्छा मकान बना लिया हो, कार ले ली हो, बिजनेस बना मिल गया हो, जॉब मिल गई हो, कहते अरे चोरी चोरी तुमने ये काम कर लिया, चोरी चोरी। अब चोरी थोड़ी किया, किसी की चोरी नहीं की, परंतु चुपचाप बिना किसी शो के आंतरिक पुरुषार्थ से वो प्राप्ति कर ली। तो कलयुग की दुनिया में ऐसी पतित दुनिया में से पावन दुनिया को ले लेना चुपचाप, तो वो श्री कृष्ण आकर्षण करने वाली आत्माएं जो गुप्त पुरुषार्थ करने वाली थी वो चुपचाप पुरुषार्थ किया। तो मक्खन चोर, स्वर्ग का गोला उनके हाथ में आ गया। परंतु वो किसी भी बंधन में बंधते नहीं है, किसी भी प्रकार की महिमा के अधीन नहीं होते। कोई भी देह तथा देह का संबंध, तन मन धन जन प्रकृति विकार सत्कार, उनको कुछ भी बांधता नहीं है, वो निर्बंधन रहते। उनको यश सदा मिलता है, उनका यश सदा उदय रहता है, तो यशोदा उनको बांध नहीं सकती। ओम शांति।
बहुत सुंदर बताया दीदी ने, कई बातों को स्पष्ट किया। मैं तो मक्खन माना क्या, जो कि सार है, जो हमारी गुण है, सच्चाई है, पवित्रता है, शक्ति है, शांति है, प्रेम है, और कृष्ण जिनको बांध नहीं सकते हैं, राइट। तो जिस प्रकार से दीदी ने कहा कि सार, तो हम एक सार हम भी लेते हैं, प्रेम। तो प्रेम के संबंधों में कृष्ण के कई संबंध हैं, राइट। कभी हम राधे कृष्ण के बीच में प्रेम देखते हैं, सुदामा के बीच और कृष्ण के बीच भी देखते हैं, पर एक प्रेम ऐसा है जिसमें बहुत गहरी मित्रता छुपी है, शिक्षाओं भरी मित्रता, जहां सखी सखी कहकर कृष्ण ने कितने भी दुख हो, कितनी भी आपत्ति हो, हमेशा रक्षा की शक्ति दी। तो कौन है वो सखी? वो सखी है द्रौपदी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि द्रौपदी को प्रश्नों को किस प्रकार कृष्ण ने उत्तर दिए, आइए देखें।
गोविंद कहाँ गया? ये क्या, आज गोविंद पतंग बना रहे हैं? कितने सुंदर है ये पतंग।
अरे सखी, तुम यहाँ? कितना सुंदर अवसर है आज, आज हम पतंग उड़ाते हैं।
पहले आप ये बताइए गोविंद, कि ये पतंग बनाने का विचार आपको कहाँ से आया?
मनुष्य को देखकर सखी। मनुष्य का मन भी तो इस पतंग के भांति उड़ता रहता है। इच्छाओं के भवन में स्वयं की डोर छूट या कट जाती है तो मन इच्छाओं के खपोड़े में टूट फूट जाता है। बावला सा हो जाता है।
कभी कभी मनुष्य किसी दूसरे के कारण ही तो स्वयं खो देता है। गोविंद गोविंद, आपके हाथ से तो रक्त बह रहा है।
जब तक पतंग को अंकुश में रखती है पीड़ा नहीं होती, किंतु जब पतंग डोर को खींचती है तो ऐसे हथेली कट जाती है। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं, संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। सखी,
मन पर कैसे अंकुश रखे गोविंद? मेरे मन में तो कई सारे प्रश्न है। मेरे जन्म का महत्व क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है?
इतने सारे प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न तो यह होना चाहिए कि कौन हो तुम? स्वयं को यदि जान लोगी तो अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे सखी।
बहुत सुंदर। तो इस दृश्य में
इस दृश्य में हमने देखा द्रौपदी का कृष्ण के प्रति प्रेम, खैर की भावना, पर उसके साथ साथ उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी था, राइट? कि मेरे जन्म का महत्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि यदि स्वयं को जान लोगी तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो वास्तव में ये प्रश्न सिर्फ द्रौपदी का नहीं है, ये प्रश्न हम सभी का है, राइट? हम सभी को कभी न कभी ये प्रश्न उठता है ना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना है। तो दीदी जी, आपसे निवेदन करते हैं, आप स्पष्ट करें कि हम जिस प्रकार से द्रौपदी ने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर, उसका मीनिंग क्या होगा?
हम कौन है? सबसे ऑफकोर्स जो द्रौपदी ने प्रश्न पूछा वो मन के विचार, परिस्थितियां, चैलेंजेस सामने देखने के लिए जरूर उसमें शक्ति चाहिए, परंतु उसको वर्णन, उस परिस्थिति को जब तक स्व स्थिति अपने आत्मिक बल को नहीं बढ़ाया है तब तक परिस्थिति का सामना नहीं किया जा सकता, समस्या का हल नहीं होता है, उलझन होती है, मन बेहद के हवाओं में उड़ता है जैसे श्री कृष्ण ने उनको ध्यान खिंचवाया, परंतु वास्तव में जो मुख्य बात है, जो इन बंधनों से पार होना चाहती है अथवा परिस्थितियों को सम्मान से फेस करना चाहती है, हल करना चाहती है, वो कौन? क्या हमारा इस शरीर जो बाहर से देखना दिखाई पड़ने वाला चीज, या इस शरीर में रहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा? तो ध्यान खिंचवाया कि मूल बात को पहले पकड़िए कि मैं कौन हूं, किसको ये इच्छा है कि हम सब परिस्थितियों से ऊपर चले जावे, विघ्नों को पार कर लेवे, किसी भी प्रकार की अवस्था में डावा डोल नहीं रहे, अचल अडोल स्थिति में रहे, जीवन का आनंद लेवे, वो लेने वाली कौन? शरीर? अगर शरीर ही आनंद लेने वाला है, सुख लेने वाला है, तो शरीर तो हमारे पास, वो चैतन्य शक्ति अपना शरीर छोड़ करके चली गई, शरीर की तो वैल्यू हमने रखी नहीं, शरीर तो अग्नि में जला देने वाली चीज हो गई अथवा मिट्टी में दफना देने वाली चीज हो गई। कौन आनंद ले रहा था, कौन सुख अनुभव कर रहा था, कौन सुख और दुख की लहरों में से गुजर रहा था? वो चैतन्य आत्मा। तो पहले ये समझना है ये मेरा मेरा कहने वाला कौन, मेरी ये परिस्थिति है, मेरा ये विचार है, मेरी ये भावना है, मेरा ये लक्ष्य है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो मैं कौन और मेरा कहने वाला कौन? तो हम अपने जीवन में पहला ये मेरा शरीर है, हमारे माँ बाप हमको ध्यान खिंचवाते हैं, तू बेटी जन्मी ना, तू मेरी बच्ची है, लाडला बच्चा है, तू लड़की है, तू लड़का है, वो हमको कहते तू लड़का है तो हम अपने को लड़का समझते, शरीर का भान दिखाया, फिर संबंध का भान दिलाया, फिर हमारे धर्म का भान दिलाया, तो हमको जो परिचय मिला वो मकान का परिचय मिला है जिसमें हम रहने वाले हैं, अथवा ये हमारी गाड़ी का परिचय हमको मिला जिसको हम चलाने वाले हैं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, मेरा नाम, मेरा नाम कहने वाली कौन? तो मैं शरीर से, मैं रहने शरीर में रहने वाली
एक चैतन्य आत्मा हूँ और वो आत्मा चैतन्य शक्ति में तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। वो चैतन्य ज्योति है। उसकी यादगार में जब शरीर छोड़ जाते हैं तो हमारे भारत की सभ्यता, कल्चर, धर्म है, ज्योत जगाते हैं, दीवा जगाते हैं। दीवा जगते तीन चीजें प्रकट हो जाती हैं। कौन सी? लाइट, उंगली रखो आग और उसका फॉर्म लो। दीवा बुझाओ, तीनों चले गए। मोमबत्ती बुझाओ, तीनों चले गए। जगाया, तीन प्रकट हो गए। तो ऐसे आत्मा जब चैतन्य ज्योति शरीर में है तो मन संकल्प कर रहा है या विकल्प कर रहा है, इच्छा रख रहा है या शुभ भावना कर रहे हैं। दूसरी बुद्धि, प्रकाश, उस जैसी बुद्धि में निश्चय निश्चय का बल है। तो वो लाइट, वो लव आत्मा के अंदर जितना ज्ञान होता चला जाता है उसकी लाइट बढ़ती चली जाती है। तो लाइट इज माइट, दूसरी बुद्धि है। ब्रेन पड़ा हुआ है डेड बॉडी में, बुद्धि नहीं है। हार्ट पड़ा है डेड बॉडी में, मन नहीं है। शरीर, कर्म, इंद्रियां पड़ी हुई है। बहुत अच्छा था व्यक्ति, बड़ा विशाल था, बहन इतनी अच्छी थी, बड़ी मीठी थी, बड़ी धारणा वाली थी, सहन शक्ति कौन, बॉडी तो पड़ी है। विचार करने वाला, व्यवहार करने वाला, व्यापार करने वाली आत्मा वो चली गई, संस्कार लेके गई। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार तीनों आत्मा की शक्तियां हैं। वो लाइट है तो वो माइट है। वो चैतन्य सितारे की तरह है। तो जैसे सितारे में चमक होती है ऐसे आत्मा में ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद, ये सत्यता की शक्ति है। तो आत्मा सच्चिदानंद की संतान चैतन्य आत्मा है जो प्रकृति के बीच में निवास करती है। इसे जब हम सोचते हैं ना, लेट मी थिंक, ये नहीं कहते लेट मी थिंक, ओ आई रिमेम्बर, फौरन जो है मेरी तो समझ में नहीं आता क्या करूं। तो समझने वाली, करने वाली, व्यवहार में लाने वाली वो चैतन्य आत्मा है। और वो आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हम कौन है? हम शुद्ध आत्माएं हैं। इस शरीर से न्यारी हैं, शरीर के मालिक हैं, कर्म इंद्रों के राजा है। इसलिए हमारे कर्म, हम आत्मा अपने समझ से जो कर्म करती हैं, व्यवहार करती हैं, तो संस्कार रूप में साथ ले जाती है। मन भी गया साथ, बुद्धि भी चली गई, डेड बॉडी रह गई। तो कभी ये नहीं कहा जाता शरीर ने आत्मा छोड़ी, आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। कभी सुना है शरीर ने आत्मा छोड़ी? आत्मा शरीर को लेती है, आत्मा शरीर को छोड़ती है। जिसके लिए भगवान ने कहा, आत्म तजे काया तैसे जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे। ये पुराना वस्त्र की तरह आत्मा शरीर को छोड़ती और लेती। तो शरीर के बाद शरीर के संबंध, शरीर का धर्म, शरीर की जाति, कुल, व्यवहार परिवार चलता है। संसार शरीर में आने के बाद चलता है। ओम शांति।
बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया दीदी ने कि मैं कौन, चैतन्य शक्ति आत्मा, और उस आत्मा में भी तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, सबका रोल अलग अलग। और ये बहुत ट्रू है कि जब शरीर को दफनाया जाता है फिर हम सोचते हैं कि जो शक्ति है वो तो चली गई, तो आनंद लेने वाला कौन, वो प्रेम का अनुभव करने वाला कौन? तो वास्तव में मैं कौन? एक चैतन्य शक्ति आत्मा। तो हमको आज हम नया इंट्रोडक्शन मिला, अपना परिचय मिला, तो उसको हम धारण करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे।
हम सभी ने कहीं ना कहीं महाभारत की कहानियां तो बहुत सुनी है. किस किस ने सुनी है, हाथ खड़ा करें. वाओ, वेरी गुड. तो उस कहानी में हमने देखा कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, राइट. और युद्ध का एक कारण था डाइस बोर्ड गेम, पासों का खेल. तो वैसे तो हम पासों का खेल देखते हैं कौरवों और पांडवों के बीच में, जिसमें एक ऐसा अनोखा खिलाड़ी था जो जो अंक मांगे उसको वही मिलता था, शकुनी. एग्जैक्टली. तो इमेजिन करें यदि वही डाइस गेम, वही पासों का खेल कृष्ण और शकुनी के बीच में हो तो क्या होगा. चलिए देखते हैं.
पधारिए वासुदेव, आज जो खेल ही लेते हैं.
दूसरों के जीवन को दांव पर लगाने का स्वभाव आज भी नहीं गया मामा श्री.
मेरे पास ही मेरी नियति है वासुदेव, मैं जो अंक मांगू वही प्राप्त होते हैं.
और मेरी नियति ही मेरे पास है मामा श्री. अंक तो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, किंतु पासे पासे तुम अपनी इच्छा से फेंकता हूँ.
तात्पर्य,
पासे फेंकना एक कर्म है मामा श्री, और प्राप्त होने वाला अंक उस कर्म का फल. आप अपने फल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते रहे जीवन भर, और मैं अपने कर्म को अपनी इच्छा के बंधन में रखता हूँ. मैं निर्णय करता हूँ कि पासे कब फेंकने हैं और कब नहीं.
वासुदेव, कर्म तो मनुष्य सदा अपनी इच्छा से ही करता है, किंतु जब अंक उचित प्राप्त होने लगे तब मनुष्य जीवन में जीतता है.
यथार्थ. तो लीजिए, मैं अपना दांव छोड़ता हूँ आपके लिए.
वासुदेव, आपके कर्म मेरु अभी यात्रा पर निकले भी नहीं, और मेरा एक मेरु आधी यात्रा पूरी कर चुका है, फिर भी आप पासा नहीं फेंकेंगे.
नहीं, आपके लिए.
जैसी वासुदेव की इच्छा. लीजिए, मेरा ये मेरु अब उस दुर्ग पर जाकर बैठेगा. अब ये अजय है. पौबारा.
मनुष्य अपने कर्मों के फल को नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है, किंतु जब पासे हाथ में आते हैं तो जुआरी बिना खेले रह नहीं पाता. वो ये जान ही नहीं पाता कि उसने पासों को नहीं बांधा है, पासों ने उसे बांधा है. जीवन में भी मनुष्य यही चिंता करता है कि उसे उसमें कर्मों का उचित फल मिलेगा या नहीं. यह चिंता नहीं करता मामा श्री कि यह कर्म करने का उचित समय है या नहीं. खेलिए मामा श्री.
पौबारा. लीजिए वासुदेव, मैंने आपको कहा था ना, मेरे पास है मेरी इच्छा अनुसार फल देते हैं. इसलिए आपके कर्म के सिद्धांतों पर मेरा विचार करना आवश्यक नहीं.
मनुष्य जब सफलता की यात्रा पर होता है तो ऐसे ही विचार करता है. इसी कारण से जब उसे निष्फलता का प्रथम समाचार मिलता है तो वो मंदिर की ओर दौड़ता है, और फिर सफलता मिलते ही उसे स्वयं पर विश्वास होने लगता है. वास्तव में उसका संपूर्ण विश्वास न स्वयं पर है और न ही ईश्वर पर. वो दौड़ता रहता है, पासे फेंकता रहता है. उसे लगता है कि वो जीत रहा है, किंतु जीवन कोई धूल सभा तो नहीं मामा श्री कि केवल सामने बैठा व्यक्ति ही खेल रहा हो. हमारी दृष्टि मर्यादा के पार भी अनेक लोग हैं जो अपने अपने दांव खेल रहे हैं. उनका परिणाम भी हम पर पड़ता है ना मामा श्री. इसलिए मैं परिणाम पर नहीं कर्म पर अधिकार रखने का प्रयत्न करता हूँ. जहाँ ना विजय का मोह हो न पराजय का भय, केवल जीवन जीने का आनंद हो और कुछ भी नहीं।
तो हम सभी ने इतना सुंदर दृश्य डाइस गेम पास्तो का खेल देखा कृष्ण और शकुनी के बीच में, पर एक ही दृश्य में कई सारी गहरी बातें हैं, राइट? पर मैं एक बात पर फोकस करना चाहूंगी जहां कृष्ण ने ये कहा कि मैं परिणाम पर नहीं लेकिन कर्मों पर अधिकार रखने का प्रयत्न करता हूं। तो यदि सारा खेल कर्मों के ऊपर है तो उस खेल में परमात्मा का क्या रोल है? कभी कुछ हम नया कर्म शुरू करने जाते हैं तो हम परमात्मा को याद करते हैं, कुछ बुरा होता है तो उनको कोसते हैं, तो हमारे कर्मों के जो खेल है उसमें परमात्मा का क्या रोल है, इसको स्पष्ट करें।
जैसे इस वार्तालाप में आपने सुना कि जब मनुष्य आत्माएं कोई कर्म अच्छा करके उसका अनुभव अच्छा करती है, तो मैंने किया अहम आता है, मैंने किया, और जब असफलता मिलती है तो भगवान याद आता है। मंदिर में दौड़ता है क्षमा करना, माफ करना, पाप नाश खत्म कर देना सब। तो कर्म के वास्तव में बेशक शकुनी ने ये एक दावा लगाया कि मैं अपने अंक अपने सामने रखता हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, इसे जो भी मैं खेल खेलता हूँ उसमें मैं सफल होता हूँ। ये खुद को डिसीव करने वाली बात है, क्योंकि कर्म का फल सिर्फ लक्ष्य की बात नहीं है, कर्म में इंटेंशन कौन सी है। कर्म करना और कर्म में वास्तव में लक्ष्य क्या रखना, एक्शन अलग चीज है, इंटेंशन कुछ और चीज है। अभी कोई किसी की जाकर के कोई सहयोग देता है, शुभ भावना से सहयोग देता है, स्नेह से सहयोग देता है, निस्वार्थ सहयोग देता है, वो कर्म भी है, कार्य भी है, परंतु वो स्नेह संबंध जोड़ रहा है, दूसरे के हृदय में प्यार उत्पन्न कर रहा है, परंतु स्वार्थ से कर रहा है, और अंदर ये है तो एक्सपेक्टेशंस होती है, मैंने सहयोग दिया, तुमने तो सहयोग दिया नहीं, हृदय की शुभ भावनाएं नहीं है, वो बंधन बन जाता है, टेंशन होता है, कंप्लेंट होती है, क्रिटिसिज्म होता है, एक दो के प्रति स्नेह के बदले और ही मनमुटाव हो जाता है। तो कार्य की बात नहीं है, एक्शन की बात नहीं है, कर्म है क्या पहले ये समझने की जरूरत है। तो वास्तव में परम पिता परमात्मा का रोल है आत्मा को कर्म की गति का ज्ञान सुनाना। सारे गीता ज्ञान में वास्तव में कर्मों की गति का ज्ञान है। तो कर्म क्या है? कर्म इंद्रिय द्वारा किया हुआ कर्म, और भगवान के बोल है कि मैं तो कर्म करता ही नहीं हूँ, मैं तो लीला देखता हूँ। क्या मतलब हुआ? यानी न्यारा होकर के साक्षी होकर के कर्म करते, न कर्म का के प्रभाव का, कर्म की सफलता का प्रभाव है, असफलता की तो बात ही नहीं है, साक्षी होकर के हर खेल को देख रहा हूँ। तो साक्षी होने वक्त पर हम भी परमात्मा से वो शक्ति लेवे कि हम जो भी कर्म करें परमात्मा को साथी बना करके करें, सर्वशक्तिमान को साथ रख करके करें, तो उसकी सद्बुद्धि देने के लिए, कर्मों की बुद्धि दिव्य, कर्म सिखाने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। इसलिए बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ता है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है? कर्म के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकेगा। खाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, एक्शन है ना, कर्म मीन्स एक्शन। हम यह कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म इंद्रियों का आधार लिया है। अगर हमारी यह कर्म इंद्रियां डिसेबल्ड हो जाती हैं, बड़ा दुख लगता है, दूसरे भी दुखी होते हैं। कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए है, परंतु विकर्म करने के लिए नहीं है। उसकी समझ आत्मा को चाहिए, दृष्टि देखने के लिए है। इसी दृष्टि से हम स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, दया की दृष्टि से देखते हैं, क्षमा की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम भावना की दृष्टि से देखते हैं। ये दृष्टि कल्याणकारी हो जाती है, नजर से निहाल करने वाली बन जाती है। इसी दृष्टि से शक से देखते हैं, वैर भाव से देखते हैं। दृष्टि तो वही है, कंटेनर वही है। उसी कंटेनर में चाहे अमृत डालो चाहे जहर डालो, पिएंगे तो असर वही होगा, बर्तन की बात नहीं है, उसमें है क्या। तो ऐसे हमारी कर्म इंद्रियों से हम कर्म किस कॉन्शियस से कर रहे हैं। इसलिए कर्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर संसार में हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म हमारा धर्म है, कर्म के बिना नहीं रह सकते, परंतु कर्म में स्वधर्म में रह के करके कर्म करना। तो उसमें तीन कैटेगरी हैं, एक है सुकर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। सुकर्म मीन्स सोल कॉन्शियस कर्म, कर्म मुझे करना है पर सोल कॉन्शियस होकर के करना है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। आंखों से देखना भी कर्म है, मन से सोचना भी कर्म है, क्योंकि मन का काम सोचना है। अब मेरे मन के ऊपर, मेरे ऊपर है, मैं पॉजिटिव सोचूं, नेगेटिव सोचूं, राइट सोचूं, रॉन्ग सोचूं, वीक सोचूं, स्ट्रॉन्ग बात सोचूं, शुभ भावना से सोचूं, स्वार्थ की बात सोचूं, परमार्थ की बात सोचूं, या व्यवहार की बात सोचूं। मन सोचता है, ये सोचने का काम है, बुद्धि फैसला करती है। कहते हैं मैंने एक बहुत बारी सोचा ये काम क्यों करूं, पर मुझे समझ में नहीं आया, अब मैंने समझा मुझे ये करना है। बुद्धि जब समझती है तो निर्णय करती है, फिर वो जो कर्म है वो अगर आत्मिक स्थिति में कर्म होता है तो सुकर्म, और जब देह के भान में कर्म होता है, स्वार्थ से कर्म होता है, ईर्ष्यावश कर्म होता है, कंपटीशन से दिखावे से कर्म होता है, उसमें एक इच्छा भर जाती है, अच्छा काम नहीं होगा उसमें। उसमें चाहे कामना, चाहे क्रोध, चाहे अहंकार, चाहे लोभ, चाहे मोह, या तो सूक्ष्म मोटा रूप या अति अंतर का रूप, उसमें वो भर गया तो वो विकृत कर्म यानी विकारी कर्म, विकर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं पाप कर्म। तो भक्ति मंदिर में जाके, मंदिर में जाके कहते हैं विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। उस समय बुद्धि में जो कर्म किया कोई ना कोई विकार के वश किया, इसलिए विकर्म हो गया। और वो पाप क्यों हो गया, क्योंकि वो बाप नहीं, परमात्मा पिता बीच में नहीं था। तो जहाँ बाप नहीं है आत्मा का, पिता साथ नहीं है, जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, परमात्मा वहाँ नहीं है। आत्मा अपने आप से भी दूर हो गई, परमात्मा से भी दूर हो गई, इसीलिए पाप मीन सेपरेशन, डिस्टेंस, ट्रुथ से दूर हो गया, सत्य से दूर हो गया, इसीलिए विकर्म हो गया। और विकर्म के कारण इंसान फिर दुखी होता है, क्योंकि वो विकर्म का बीज जो है वो कर्ता उस जो बोया है, जैसा कर्म वैसा फल, बोए बीज बबूल का तो आम खा से खाए, जो बीज बोया उस हिसाब से बढ़ जाता है, वो आम नहीं होगा, कड़वा बीज बोया है तो कड़वा ही फल निकलेगा, करेला आम नहीं बन जाएगा, उसका बीज करेला ही निकलेगा, आम की गुठली आम का ही फल देगी। इसलिए जब हम आत्मा परमात्मा की याद में बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ते हैं तो वो हमारा कर्म सुकर्म होता है। परंतु परमात्मा के महावाक्य क्या है, विकर्म से भी परे सुकर्म से भी परे, सुकर्म करो परंतु कर्मातीत बन जाओ, कर्म करते हुए कर्म के अभिमान में नहीं आओ, वो अभिमान बंधन बन जाएगा। और अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किया, कोई ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, आपको दुख होएगा। तो कर्म करते भी कर्मातीत का मतलब, परफेक्शन का मतलब कि आपके एक्शन में परफेक्ट कर्म का मतलब है कि आपका अपने कर्म में अपने अंदर के डिफेक्ट खत्म हो जावे, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ अदर्स। सो कर्मातीत। तो परमात्मा की कोई महिमा करे, परमात्मा खुश नहीं हो जाता कि हाँ तुमने मेरी बहुत महिमा की है। अपमान करे, भगवान तू बड़ा निर्दयी है, मेरा बच्चा मेरे से ले लिया, तू बड़ा अन्यायी है, मेरे साथ ही अन्याय हो गया, मुझे मदद नहीं की, तू तो रहम दिल नहीं है, बड़ा कठोर है। भगवान इसमें नाराज नहीं होते। महिमा करो तो भी परे है, अपमान करो तो उनको अपमान नहीं लगता है। तो महानता का अर्थ यह है निर्माणता रहे, अभिमान ना हो, तो कर्म नेचुरल श्रेष्ठ होवे। इसीलिए अकर्म का मतलब है कि किसी भी कर्म के प्रभाव नहीं हमें आना है, बंधन में नहीं बंधना है, नेचुरल कर्म चल रहा है। जैसे अभी कोई हमारी कर्म इंद्रियां हम चल रहे हैं नेचुरल कर्म, सोच किया ऑटोमेटिकली देखते हैं, अगर शुद्ध भाव में देख रहे हैं तो आंखें कोई चीज को देखते हुए भी नहीं देखती है, परंतु कोई संकल्प है तो शक बन जाए, फिर गालियां देने लग जाएंगे दूसरे को, या डाउट कर करके डिफेक्ट निकालेंगे। इसीलिए अकर्म का मतलब है न्यूट्रल कर्म, नेचुरल कर्म। तो नेचुरल नेचर जब होती है वो दिव्यता की मूर्ति होती है, वो नेचुरल प्रकृति में भी है और आत्मा के अंदर भी है, देव आत्मा के अंदर। जब बुद्धि दिव्य बन जाती है तो कर्म दिव्य होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए प्रकृति को हम भगवान मानने लग जाते हैं। क्यों? कि फूल सुगंध दे रहे हैं। आपने फूल को कहा बहुत अच्छा, खुश नहीं होता फूल, आपको एलर्जिक है, आपने फेंक दिया फूल, फूल नाराज नहीं होता है। फूलों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अच्छा आया व्यक्ति, मेरे बगी मालिक आया, इसलिए खुश ज्यादा खुशी खुशबू ज्यादा दूंगा, कोई विजिटर आया है बगीचे में, कोई स्ट्रेंजर आया, खुशी नहीं दूंगा। नहीं, सूर्य शक्ति सबको बराबर देता है, चंद्रमा शीतलता सबको बराबर देता है, सागर शीतलता सबको बराबर देता है, पर सागर में स्विम करो, सागर बांधेगा नहीं आपको, आप जाओ स्विम करके बाहर निकल आओ, पकड़ेगा नहीं। तो बंधन कर्म हमको पकड़े नहीं, कर्म हमको बांधे नहीं, वो निर्बंधन स्टेज कर्मातीत स्टेज कहलाती है, वो साक्षी दृष्टा, उसको ही कहा कि मैं तो लीला देखता हूँ, मैं कर्म नहीं करता हूँ, करता हूँ अभोगता हूँ। इसलिए कर्मों की गति में फिर तीसरा एस्पेक्ट भी है, इंस्टेंट कर्म, शॉर्ट टर्म कर्म, लॉन्ग टर्म कर्म। इसीलिए कर्मों का खाता बनता है। बेशक शकुनी ने कहा कि मैं तो गिनती पहले अपना लक्ष्य रखता हूँ, उतना मुझे मिलता है। वो धोखे से, छल से, कपट से हमने ले लिया, परंतु वास्तव में हिसाब किताब बनता है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। तो कोई चीज इंस्टेंट है, कोई शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। हमने फ्लावर उगाए, कुछ वीक्स में फ्लावर खिल गए। सेम वीकेंड पर हमने सब्जी लगाई, थोड़ा महीना लगा। उसी वीकेंड पर हमने ग्रेन्स बोए, 6 महीना लग गया। उसी वीकेंड पर हमने फ्लावर नहीं, पेड़ों के फल फूल, फलों के बीज लगाए, 6 साल लग गए फल निकलने में। लॉन्ग टर्म है। तो कोई कर्म बहुत समय के बाद फल देते हैं, कोई कर्म इंस्टेंट फल देते हैं। जब कर्मों की गति का ज्ञान होगा तो विकर्म से फ्री होंगे और परमात्मा से संबंध होगा, विकर्म से छूटने की शक्ति मिलेगी और श्रेष्ठ कर्म करने का दृढ़ता जीवन में आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अभी परमात्मा को साथी बना करके और साक्षी होकर के कर्म करे तो सदा ही हर कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म का फल दिव्यता है, देवता है। तो देवताओं के सामने जाके श्रेष्ठ कर्म की शक्ति मांगते हैं, परमात्मा से भी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति मांगते हैं।
बहुत सुंदर बातें बताएं दीदी ने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली क्लियर किए कि कर्म माना क्या, किस कॉन्शियसनेस में हम कर्म करते हैं वो मायने रखता है। हम रियली में शुभ भावना से किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि हाँ हमें भी कुछ रिटर्न मिलेगा, इसलिए हम कर्म करते हैं। और दीदी ने कहा कि जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। तो जब तक हम परमात्मा को अपना साथी बनाकर, साक्षी रखकर कर्म करते हैं तो वो ही श्रेष्ठ कर्म है, राइट?
तो परमात्मा को साथी बनाना, एक साथी भी ऐसा था जो रथ पर सवार होकर अर्जुन को शिक्षा दी, गाइड किया। तो अनोखा सारथी ऐसा जिसने अनेक रूप अपनाया, कभी माधव बनकर अर्जुन को दृष्टि, नया दृष्टिकोण दर्शाया। तो चलिए देखते हैं एक और सीन कृष्ण और अर्जुन के बीच।
मेरी मति बंद हो गया माधव, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं है, मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों, किस हेतु माधव, किस हेतु? अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास, कोई भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं।
विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या यह सत्य नहीं जानते हो? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ।
कैसे शस्त्र उठाओ माधव? अपने ही हाथों से अपने परिवार का विध्वंस, ऐसा कर मैं कैसे कर सकता हूँ माधव?
तुम्हें कर्म और कार्य के बीच भेद है, यह जानना आवश्यक है पार्थ। सभी कर्म कार्य है, परंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो, और जब कर्म बिना किसी फल के साथ किया जाए उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। और परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर कर अपने को आत्मा जान कर्म करना ही कर्म योगी कहलाता है। इसलिए परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर कर स्वयं को जानो पार्थ।
अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माधव?
पार्थ, परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण भाव उत्पन्न होता है। जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाता है वही वास्तव में कर्म योगी बनता है।
समर्पण का भाव अर्थात?
वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना।
अर्थात माधव, समर्पण भाव से परमात्मा के दर्शन होते हैं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
हे पार्थ, मैं निराकार हूँ, मुझे इन चर्म चक्षों द्वारा नहीं देखा जा सकता। मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचानता है। मैं अभोक्ता हूँ, अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, मैं अकाल मूर्त हूँ।
अद्भुत दृश्य ये कृष्ण का, जहाँ कृष्ण ने कई भाव से कई सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जैसे समर्पण भाव, समर्पण भाव मानो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना। पर कभी कभी ये क्वेश्चन मन में आता है कि जहाँ कृष्ण ने ये कहा कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, तो कृष्ण का जन्म था, हुआ था, और कृष्ण और ये भी कहा कि मुझे इन चर्म चक्षुओं द्वारा देखा नहीं जा सकता। पर कृष्ण को तो अर्जुन ने भी देखा, शकुनि ने भी देखा, राइट? इन सभी कॉन्वर्सेशंस में हम देखते हैं। तो वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, और कौन है जो कहता है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, मुझे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता? दीदी जी इसको स्पष्ट करें।
बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी गीता का ज्ञान का आधार श्रीमद् भागवत गीता का सार यही है, परमात्मा के कर्तव्य को और उनके अवतरण की गुह्य राज को समझना। गीता में ही महावाक्य है, जन्मम कर्मम चमे दिव्यम, मेरा जन्म भी और कर्म भी दिव्य और अलौकिक है। श्री कृष्ण का जन्म जो दिखाया वो साकार, जैसे बच्चा जन्म लेता है इस प्रकार से जन्म है। फिर ये गीता में है, अवजानन्ति मम मूढ़ा मानुष्यम तन आश्रितम, मैं मन मूढ़मति मानव, मोटी बुद्धि वाले मनुष्य, जब मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूँ तो मुझे नहीं पहचानते और तुच्छ समझकर गालियां देते हैं। अभी वास्तव में ये तीन जीवन कहानियों का मिश्रण है। कंफ्यूजन क्यों है कि कर्तव्य किसी और का है, करण करावन हार, करवाने वाला करने वाला। अब इसमें अर्जुन, श्री कृष्ण को जो कृष्ण के रूप में देखा तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन साकार रूप में देख रहे हैं। संबंध जोड़ने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा को साकार रूप में आना पड़ता है। संबंध यहाँ साकार सृष्टि की प्रॉपर्टी है। तो परमात्मा का जन्म मनुष्य आत्माओं की तरह नहीं होता है, ये आत्मा का नियम है कि वो अपना शरीर धारण करती है और अपनी कर्म इंद्रियों से जो आत्मा का मन बुद्धि और संस्कार तीनों शक्तियां हैं वो व्यवहार में लाती है अथवा प्रत्यक्ष करती है, जिसको कैरेक्टर कहा जाता है, चरित्र कहा जाता है, जीवन की पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो परमात्मा अब सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान, उनका स्वरूप जिस्म वाला नहीं है, वो जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करता हूं, जन्म नहीं लेता हूँ। आत्मा को जैसे बोलने के लिए मुख चाहिए, मनुष्य आत्मा से बात करने के लिए मनुष्य जैसी भाषा चाहिए, तो वो उनके माँ बाप होंगे। परमपिता परमात्मा का कोई पिता नहीं है, परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, तो सुप्रीम सोल सोल ही है, परंतु अंतर क्या है आत्मा परमात्मा और देव आत्मा में। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, कर्म इंद्रियों के बंधन में, कर्म और विकर्म के खेल में फंस जाती है, और परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं आता। टेम्पररी पर काया प्रवेश, जिस प्रवेश जिसको शरीर रूपी रथ के रूप में लेखक ने लिखा कि अर्जुन का श्री कृष्ण सारथी बना। अब अर्जुन आर्यजन वो आत्मा कौन थी, आर्य धर्म, सनातन धर्म, देवी देवता धर्म की फर्स्ट आत्मा कौन थी? श्री कृष्ण पहला पत्ता श्री पृथ्वी पर आया। सागर ने देखा, भक्ति मार्ग में यादगार है कि प्रलय हो गई और सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ गया। कहां से प्रकट हुआ? नहीं, वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, यानी देव आत्मा फर्स्ट आत्मा है। वो सुंदर है, वो पवित्र आत्मा है, वो देव आत्मा है। उनका करैक्टर ही दूसरा, उनकी महिमा है श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये शिव की महिमा नहीं, निराकार की महिमा नहीं है, ये साकार की महिमा है। परंतु हम श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, नारायण जी का जन्मदिन नहीं मनाते। श्री कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं और उनकी महिमा करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण। वो बचपन में कौन का नाम श्री कृष्ण है, स्वयंवर होने के बाद उनका नाम नारायण है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। तो स्वयंवर से पहले ऐसा सतयुग की सृष्टि में दोनों का नाम चेंज होता था, नारी लक्ष्मी पुरुष नारायण, राधे लक्ष्मी जी, राधे जी लक्ष्मी कहलाई, श्री कृष्ण जी नारायण कहलाए। आपने कभी भी नारायण जी का बेबी रूप नहीं देखा होगा और श्री कृष्ण जी का बुढ़ापा नहीं देखा होगा। वो साकार रूप है, परंतु वो समय का अंतर है। वो सतयुगी दुनिया जब वैकुंठ की दुनिया थी, भारत स्वर्ग था, सुख धाम था, उस समय श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो समय का भी अंतर हो गया है, बहुत सारी बातों का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी समय कंफ्यूजन है। तो परमपिता परमात्मा का आना कब होता है? जन्म नहीं होता पर अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्म से दलानिर भवति भारत अभ्युत्थानम तम तब शिष्य स्वधर्म का धर्म का को लाने के लिए, धर्म का विनाश करने के लिए अवतरित होता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। तो जन्म माना शरीर को लेना, मरना माना शरीर को छोड़ना। तो परमात्मा शरीर को लेता है पर काया प्रवेश करता है, उसको उन्होंने जन्म मान करके श्री कृष्ण वाला रूप रखा। तो सारथी यानी शरीर रूपी रथ में कर्म क्षेत्र पर धर्म के युद्ध के लिए, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, ये धर्म के क्षेत्र पर कर्म करने के क्षेत्र पर परमात्मा को स्वधर्म में टिकाने के लिए, अधर्म पाप कर्म का विनाश कराने के लिए अवतरण लेना पड़ता है। क्यों? कि मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य की भाषा चाहिए। तो किसको ज्ञान दिया? एक अर्जुन नहीं, हम सब आत्माएं आर्यजन है। हम सब इस समय कंफ्यूजन में हैं, सृष्टि का क्या होगा? एटॉमिक बम हम ही बना रहे हैं, हम ही सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, विध्वंस हो रहा है और विनाश होना भी है, ये भी समझ रहे हैं। पर सत धर्म की स्थापना भी होनी है, तो कौन करेगा सत धर्म की स्थापना? सत कर्म करने वाले सत धर्म करेंगे, सत धर्म वाले सत कर्म करेंगे। तो परमात्मा को फिर शर्म सिखाने के लिए इस शरीर रूपी रथ में, घोड़े गाड़े वाली रथ में नहीं, शरीर रूपी रथ, वो हम हमेशा कहते हैं, सदियों से कहते आए हैं, कोई शरीर छोड़ जाता है, हम कहते हैं जब डेड बॉडी को, बॉडी को ले जा रहे होते हैं, कहते अरथी जा रही है, अरथी यानी इसमें रथी नहीं है। और भगवान शरीर रूपी रथ में, अर्जुन उसमें बैठा है, आत्मा उसमें बैठी है, सारथी साथ में बैठा, अर्जुन पीछे बैठ गया तो भगवान क्योंकि निराकार दिखाई नहीं देता कृष्ण का रूप रख दिया, श्री कृष्ण आगे बैठा, तो निराकार को वो साकार सर्वश्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप समझ करके निराकार को साकार कृष्ण बना लिया। पर वास्तव में निराकार निराकार ही है, वो सदा सलामत निराकार निरहंकार और निर्विकार है, परंतु पर काया में प्रवेश करके फिर सब आत्मा को ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान का समय कब समय था, जब अनेक धर्म अनेक भाषाएं अनेक राज थे, वो अभी समय है। यादव कौरव पांडव तीनों सेनाएं उपस्थित थी, अब का समय है। कौरव कौन, जिनको धन का पोजीशन का, दुर्योधन को दुर्योधन, शिशुपाल शकुनी, युद्ध में दुष्टता की पॉलिसी दुर्योधन, ये नाम है लक्षणों के, गुणों के। अटैचमेंट है, सिर्फ बच्चों की पालना ही जीवन है, बस यही समझ करके जीवन बिताना। शक वाला जीवन, धोखे से जीवन दूसरों को जीतना। तो ये मनुष्यों के कैरेक्टर का नाम है, ना कि व्यक्ति विशेष का नाम। तो ये जितने भी पात्र हैं महाभारत के, वो हमारे आत्मा के, इस मनुष्य आत्मा के कैरेक्टर है। कैरेक्टर एक्टर है, एक्टर महाभारत में मनुष्य रूप में दिखाए हैं। तो ये आध्यात्मिक भाषा है कि निराकार परमपिता परमात्मा फिर साकार में आकर के ज्ञान देते हैं साधारण तन में प्रवेश करके। तो सामने तो शरीर दिखाई पड़ रहा है ना, इसलिए मनुष्य आत्माएं साधारण रूप देख करके पहचानती नहीं है। तो परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है, वो बीज रूप है। हे अर्जुन, अपना परिचय परमात्मा देते हैं, मैं बीज रूप हूँ। ये मनुष्य सृष्टि, ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक है गीता जी का, कि मनुष्य सृष्टि उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज रूप हूँ। यानी मैं रचता ऊपर हूँ, मनुष्य सृष्टि नीचे है। और मनुष्य सृष्टि में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक धर्म एक राज एक भाषा थी। वो सत धर्म सनातन धर्म सुख की दुनिया थी, पैराडाइज था, वैकुंठ था, बहिष्ट और अर्थ था, हेवन ऑन दिस अर्थ, आकाश में नहीं। यही भारत भूमि स्वर्ग भूमि कहलाती थी, यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। यही तना, फिर ब्रांचेस सब ब्रांचेस निकलती हैं। जब विकर्म करना शुरू करते हैं, देह के अभिमान में आ जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, ज्ञान भूलना शुरू हो जाता है, तो अनेक धर्म आना शुरू होते हैं। इस्लाम धर्म आया, बुद्ध धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, सन्यास धर्म आया, सिख धर्म आया, ब्रांचेस सब ब्रांचेस आना शुरू हो गई। कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, एक ही धर्म में अनेक शाखाएं आपस में लड़ रही हैं। ऐसे समय पर परमात्मा का आना होता है। तो ये सृष्टि चक्र की कहानी है, इसलिए परमात्मा को पहचानने के लिए उनका नाम उनका रूप, जिस्म वाला रूप नहीं है, क्योंकि जिस्म है ही नहीं। गॉड इज लाइट, गॉड इज नॉट फादर ऑफ वन रिलीजन, श्री कृष्ण इज नॉट द फादर ऑफ ऑल रिलीजन। भारतवासी ऑफ कोर्स, बट गॉड इज गॉड, गॉड इज वन एंड दैट्स इनकॉर्पोरियल, सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल, ही इज एवर सोल एवर लाइट एवर पावरफुल एवर ब्लिसफुल, सत्य चित्त आनंद एवर ट्रुथ एवर लिविंग एवर ब्लिसफुल। सो दे इनकॉर्पोरियल निराकार ज्योति स्वरूप, तो उनका नाम बेनेवोलेंट बीइंग गॉड, गॉड इज गुड 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 गॉड, शिव benevolent, benevolent, kalyankari. Shiva Shambhu. God is not created by anyone. Self-manifestation. I'm sorry to tell. So God is eternal, the soul is eternal, and matter is eternal, and this is the play of this world that we are playing. So God gave this knowledge. So Paramatma akar ke knowledge dete hain, to unka kartavya hai, knowledge dene ka. And wo knowledge bhakti marg mein, Gita gyan ki yadgar mein. So actually Gita ka gyan dene wala incorporeal God hai. परंतु हम सामने कोई साकार वार्तालाप में कम्युनिकेशन में समझने के लिए श्री कृष्ण का रूप है. इसलिए अर्जुन पहचान नहीं सका. सोच देखा तब समझा कि मैंने तो आपको साकार रूप में ही देखा. तो साकार इंसान परमात्मा नहीं है. हमने महात्मा जी को भगवान समझ लिया, गुरुदेव को भगवान समझ लिया, कृष्ण जी को भी भगवान समझ लिया, हनुमान जी को भी भगवान समझ लिया, सबको भगवान. भाग्यवान है वो ईश्वर, इच्छा पूरी करने वाला भगवान, भाग्य बनाने वाला, पर परमात्मा की महिमा पतितों को पावन करने वाला. तो परमात्मा का नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, जन्मम कर्मम समे दिव्यम, मेरे दोनों चीजें अलौकिक है, डिवाइन है. कर्म मनुष्य जैसा नहीं है, कर्म बांधने वाला नहीं है. मेरा कर्म कर्म बंधन छुड़ाने का है, डिवाइन एक्शन है. और वो है नॉलेज देकर के आत्मा को अज्ञान अंधकार से मुक्त करना. तो वो समय अब है जबकि दोनों मौजूद है. पोजीशन चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए. अर्जुन को क्या चाहिए था? ओनली वन गॉड. एंड वन गॉड हैज द ऑल पावर, ऑल पावर्स. एंड दैट्स व्हाई इन द होल गीता, गीता ज्ञान में क्या है? योग लगाओ, मेरे साथ योग लगाओ, मेरे साथ संबंध जोड़ो. हर चैप्टर में लास्ट का वर्ड है ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग योग, सन्यास योग. योग का मतलब हठ कर्म इंद्रिया नहीं, योग माना संयोग, मेरे साथ संबंध जोड़ो. तो परमात्मा अपने साथ संबंध जुड़ाने के लिए टेम्पररी परकाया में प्रवेश करते हैं, जन्म नहीं लेते. इसीलिए मनुष्यात्माएं नहीं समझ सकती. तो जब ज्ञान मिला अर्जुन को तब समझ में आए पहचान. तो ज्ञान इज लाइट, लाइट इज फिर माइट. दैट माइट हेल्प्स अस टू फाइट विद व्हाट? नॉट विद ह्यूमन बीइंग. कॉन्कर योर सेल्फ, बिकम सेल्फ सॉवरन, फाइट व्हाट द वॉइसेस आर इनसाइड, एंड दैट इज द बैटल फील्ड. एंड ऑल ऑफ अस आर ऑन दिस बैटल फील्ड, एंड वी हैव टू बिकम कॉन्करर. देन दिस वर्ल्ड विल बिकम the world of happiness, and this the globe of butter will come in the hand of not only one Krishna but the souls who are pure, divine, incognito effort makers and yoga with the supreme being. That is the power of the Gita.
वंडरफुल, बहुत खूबसूरत. तो जैसे शुरू में कहा था ना कि दीदी हमको ज्ञान के डेप्थ में ले जाएंगे, रियली में परमात्मा का परिचय, एवर ब्लिसफुल, एवर लवफुल, प्योर, परफेक्ट. तो जैसे दीदी ने कहा कि गीता के हर चैप्टर में लास्ट में ये कहा है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, योग लगाओ. तो हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी. इम्बाइज करते हैं हम, फर्स्ट सीन से हमने जो जो सुना उसको इम्बाइज करना है, रिफ्लेक्ट करना है. परमात्मा का परिचय मिला, कौन है वो? क्या वो मनुष्य है या निराकार, सुप्रीम, एवर ब्लिसफुल? वो सारथी कौन है? तो अभी हम कुछ मिनट मेडिटेशन करेंगे और उस मेडिटेशन के द्वारा दीदी ने जो बातें हमको बताई आज जो हमने सेशन में सुना उसको रिफ्लेक्ट करना है, समझना है, अंदर लेना है। तो चलिए कुछ मिनट अभी मेडिटेशन करते हैं।
What am I? Where do I exist in this body? I become aware of my true self. I am a soul. An eternal being of light. I have taken this physical costume experience myself and to express myself. I play my role through this physical body. I am not this body. I am a soul. A thinking being. Pure mind. As I think, so shall I become. I think of peace. My original nature, my religion, Swadharma, I realize as I am free from the influence of this body, I am a pure soul. Purity consists peace. Love, happiness, wisdom. I am. A pure, and peaceful soul, seated in the center of my forehead. My thoughts are creating the feelings within me. I feel peace. I realize my true nature. My mind is like a cool and calm lake. Clean. Still. Silent. Peaceful. Positive and pure energy creates ripples in my mind. In this lake, ripples of joy, I enjoy this beautiful moment. Peace. I dive deep I turn within deeper and deeper. The deeper I go, the higher I fly. Light, free, this magnetic energy of pure purity, pure love, connects me with the Supreme Being. The Supreme Soul. The ocean of love. Pure love. Selfless love, benevolent love. Neutral love. Eternal love. This loveful relationship is yoga, belonging to the Supreme Being. I belong to God. God belongs to me. I realize I am child of God, a pure being, peaceful being. Blissful. Om Shanti. Shanti. Thank you.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Didi. हमारे सभी characters को भी एक बार thank you करें और अपने लिए भी इतना कीमती मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ आए. Thank you me. तो ऐसे ही हमने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी. और भी कई कार्यक्रम होते हैं, इन हाउस होते हैं, ऑनलाइन होते हैं. तो सुनने के लिए या जुड़ने के लिए हमारा जो वेबसाइट है globalcooperationhouse.org, उसमें सर्च कर सकते हैं. कई सारे इवेंट्स कोर्सेस मिलेंगे. तो हर सेशन का एक ब्यूटीफुल एंडिंग होता है, कुछ गिफ्ट्स मिलती हैं, टोलियां मिलती हैं. तो आज भी हम सभी यहाँ से ब्लेसिंग्स और टोली लेकर जाएंगे. सभी को रो बाय रो आना है, हमारे अशर्स आपको गाइड करेंगे. और जिन्होंने अभी झांकी नहीं देखी है वो वापस जाकर देख सकते हैं प्रोग्राम सेमिनार रूम में. झांकी का प्रदर्शन बहुत सुंदर है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं. चलिए